اسلام آنے سے کئی سال پہلے ملک یمن اور قدیم شہر نجران میں مظلوم غلاموں اور بیدار لوگوں نے گروہ در گروہ ہو کر عیسائی مذہب میں شمولیت اختیار کی. ربیان، علماء یہود اور نجران کے نااہل گورنر اندریاس عیسائی رہبر فیمون کے سامنے بے بس ہو گئے. اس صورتحال میں یمن کا خوخار رہنما زینوس نجران صنع کے سالانہ مقابلے کی آخری تقریب میں شرکت کے لیے شہر جا رہا ہے. بنی اسرائیل کے حکمران اور ربیوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے زینوس کے آنے سے پہلے فیمون اور نئے عیسائیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا.
میں تو بس مرنے ہی والا تھا.
میں آپ کے مرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. میں خود اتنا روئی کہ اپنے مرنے کی دعا کی.
جناب میری زبان گونگی ہو جائے. اگر آپ مارے جاتے تو نجران کا سارا شہر ماتم میں بیٹھا ہوتا. مقابلے تو بند ہی ہو گئے تھے. پڑوسی ملک کے سفیر نجران بھی آئے تھے. ان کے ساتھ تجارت کا معاہدہ کرنے کا اچھا وقت تھا. بازار میں تو تیزی بھی آ سکتی تھی. آپ کو ایک شہر کا اچھا حکمران کہا جاتا ہے جہاں آپ کی موت سے مجھے بھی فائدہ ہوتا.
میں تمہیں تاجر بنا دوں گا.
یہ تیر اندازی ان لوگوں کا کام ہے جو نجران میں چپکے سے رہتے ہیں. اس تیر کو عیسائیوں کی کمان سے رہا کیا گیا تھا.
وہ تم ہی تھے جس نے فیمون اور عیسائیوں کو خاموش کرنے کے لیے کتاب تورات نئی اور پرانی والی کو ادھر ادھر کر دیا یا نہیں کیا؟
جناب اعلیٰ، آپ تو حاکم وقت ہیں. آپ اس وقت سے ہیں جب ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی. اسی وقت ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا. तो ये ज्यादा अच्छा।
फेमोन के साथ आपकी सारी बहस का नतीजा आखिर क्या निकला? ईसाई कीड़े मकोड़ों की तरह इस हद तक बढ़ गए हैं कि आज वो मेरे कत्ल करने का इरादा रखते हैं।
कुछ ही दिनों में ज़ेनोस यहाँ पहुँच जाएगा।
हमें मुसाफिरों को यकीन दिलाना होगा कि हर चीज महफूज, नज़ारत और निगरानी में है।
मैं आपको खुशखबरी देने आया हूँ कि हम अजीम ज़ेनोस की आमद से कब ईसाइयों में नए आने वालों और फेमून के रहबरों के मसले को हल करने के लिए चारा जोई करेंगे, और ये खुशखबरी जो है वो सबके लिए है। ये आप अच्छी तरह से समझ लें।
ठीक है, मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ करूँगा।
बस काम ऐसे होते हैं जैसे हुकूमत करना सिर्फ दुआ के जरिए नहीं हो सकते, बल्कि इल्म और हिकमत की जरूरत होती है।
क्या आप लोग मुकाबला देखने जा रहे हैं नजरान में? मैं भी मुकाबले में हिस्सा लेने जा रहा हूँ, और इस साल तो मैं ही चैंपियन बनूंगा।
से कितनी बार कहा कि मुझे अकेले नजरान जाने दें, लेकिन आप नहीं माने।
आपके वालिद सही कहते हैं, अकेली औरत का यहाँ सफर करना महफूज नहीं है, और मैंने खतरा महसूस कर लिया था। ये नजरान है, हर शख्स किसी ना किसी वजह से इस गंदगी में पड़ा हुआ है।
इन सब मामलों से डर जाते हैं।
मुझे अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है, और मेरे लिए हर चीज से ज्यादा अहम है। मैं औरतों की छोटी मोटी अफवाहों की परवाह नहीं करता, लेकिन मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि नजरान की औरतें मेरे बारे में क्या सोचती हैं।
आप पर हमला जो हुआ वो मेरा काम था।
तुम्हारा काम था? तुमने किया?
मैंने यमन के सबसे बेहतरीन तीर अंदाज से काम लिया था, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
डरो खौफ के मारे मुझे अपनी मौत नजर आ गई थी, और तुमने कहा कुछ नहीं होता।
अब आपके पास एक बहाना है कि इस काम को इन ईसाइयों की गर्दन पर डाल दे और अपने काम का अंजाम देखते जाए।
फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं?
अगर ज़ेनोस के आने तक ये वसवसे जोर से बुलंद हो जाते हैं और हर शख्स आपको आपकी नाअहली और नालायकी के ढोल पर पीटता, तो इसमें कोई शक नहीं कि मुकाबलों के खात्मे तक आपके हाथ से हुकूमत चली जाती।
ठीक है, अब तुम बताओ मैडम क्या करूं?
हमले के जुर्म में किसी शख्स को फांसी पे लटका दो, एक ऐसी फांसी कि दुनिया याद रखे। किसी ऐसे शख्स को सजा दें जो नजरान के हाकिम का खून बहाना चाहता रहा हो, और इस तरह सलूक करें कि आपकी इस भरपूर ताकत की वजह से मुजरिम को अपने काम की जल्द सजा मिल जाए।
ठीक है, अच्छी सोच है। मैं मुजरिम को ढूंढने और उसको गिरफ्तार करने का हुक्म देता हूँ, और सरेआम फांसी का ऐलान भी करता हूँ।
ऐ नजरानियों, तुम सब एक ऐसे शख्स का अंजाम देख रहे हो जो अपने गुनाह का एतराफ कर चुका है और आपके बादशाह की जान लेने का इरादा रखता था। ऐ नजरान के लोगों, ये इंसाफ बहुत जरूरी है। यही अपने बाप दादा के मजहब से मुंह मोड़ने का नतीजा है। ये गुमराही है। अब हम सब एक साथ आसमान की तरफ हाथ फैलाकर इस जवान की रूह की मगफिरत की दुआ करेंगे। खुदा तुम्हें माफ करे और तुम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए।
चाकू फेंकने में जो जीतेगा उसको 50 सिक्के मिलेंगे। आइए यमन के हुक्मरान ज़ेनवास और नजरान के गवर्नर अंद्रियास के नाम से शुरू करते हैं।
नजरान में सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे हैं।
बदकिस्मती से तुम एक ऐसे दिन आई हो जब तमाशाई कम थे। कल आई होती तो देखती कि कैसे तालियों के शोर से दीवारें लरज रही थीं।
हाँ, लोग तो कम थे, लेकिन मेरे लिए जैसा आप जानते हैं कि मैदान का हीरो अहम था।
लेकिन मेरे लिए तमाशाई बहुत अहम है।
अजीब।
ओ, हाँ, इस बार अच्छी बात ये थी कि तुम यहीं मेरे पास थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सच कह रहा हूँ।
तारफ और तारीफ को साइड में रखो। ये तो है कि तमाशाई बहुत अहम होते हैं। लोग हमेशा अहम होते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है कि नजरान मुझे अपना नया चेहरा ना दिखाता हो। आखिर नजरान किस किस्म का शहर है कि तमाशाई फांसी के मैदान को ज्यादा तरजीह देते हैं मुकाबले के मैदान पर?
दूसरे शहरों की तरह नजरान के भी दो चेहरे हैं। एक मोहब्बत है और दूसरा नफरत, और नफरत का यहाँ पर ज्यादा बोलबाला है।
ज़ेनोस,
मुझे उम्मीद है कि गवर्नर खातून की दुआ खुदा जरूर कबूल करेगा।
अब हमने फैसला किया है कि हम यहाँ ज्यादा आएंगे।
यहाँ का दरवाजा खुदा के बंदों के लिए खुला हुआ है, बल्कि आपको तो खुदा के
मुझ में अभी नसीहत और तबलीग सुनने का हौसला और सब्र नहीं है। मैं दुआ और नमाज अपने महल में भी पढ़ सकता हूँ।
मुझे तो ये डर खाई जा रहा है कि कहीं ईसाई आपके महल में नफूज ना कर ले। ईसाइयों का शहर में हर जगह असर रसूख हो गया है और उनकी जड़ें मजबूत हो गई हैं।
आपको कैसे पता चलेगा कि आपके उलमा ईसाई नहीं हुए?
हमारे उलमा हमारे दीन के तर्जुमान हैं और वो बखूबी जानते हैं कि फीमून की बातें धोखेबाजी के अलावा और कुछ नहीं। निजात दहिंदे के आने की खुशखबरी एक बेबुनियाद और गलत झूठ है।
फिर तो महल और माबत का एक होना और मुत्तहिद होना जरूरी है।
हमारी जंग फेमूनियों की सोच के साथ है। हमें सब्र करना होगा और हमने जो काम शुरू किया था ज़ेनोस के आने से पहले खत्म करना होगा।
मुकाबले के खात्मे से पहले ही फीमूनियों को निजरान से निकाल देंगे और को तरह छोड़ देंगे।
वो कहाँ जाएंगे?
मौत की तरफ।
हैरत है, इस मंसूबा के बारे में अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया गया था? एक दोस्त का कत्ल हम सबका खून ले जाता।
न نہ فیمون اور نہ ہی ہم علماء اور نہ ہی آپ اور آپ کی سرکار قتل کریں گے۔ ہم نے ہر ایک پوائنٹ کو دیکھ لیا ہے۔ فیمونیوں کو ہم اس طرح سے مروائیں گے کہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہونے پائے۔ ذرا صبر سے کام لیں۔
تو سائے کے پیروں کی بھی آواز سن لیتا ہوں۔
اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تنہا آیا ہوں
بغیر گارڈز اور نوکروں کے۔
بغیر نوکروں اور محافظوں کے۔
ٹھیک ہے خوش آمدید۔ مطلب کام اتنا اہم تھا کہ کل آپ کو بھی اپنے بل سے باہر نکلنا پڑ گیا۔ نجرانی ہے؟
نہیں، شاید کوئی شامی غلام ہے یا بغداد سے نجران آیا ہے۔
نکلو، کوئی سودا نہیں ہوگا۔
تمہیں کیا ہو گیا ہے حاران؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تم تو صرف اسی کی آواز سنتے تھے۔
وہ دن گئے جب میں بھیک مانگنے والا پیالہ لے کر نجران کی گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا۔ دیکھو میرے ہاتھ کے گرم خون کو، اب میں اتنا سستا نہیں ہوں۔
فیمون نجران عیسائیوں کا رہنما ہے، نہ ہی تلوار باز ہے اور نہ ہی سرکش غلام۔ اس کا ہتھیار گفتگو اور بیان ہے۔ لوگ اس کی باتوں سے بیوقوف بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور عیسائی بن جاتے ہیں۔ اسے ہمارے ہاتھ سے یا اندریاس کے ذریعے قتل کرنے سے شہر میں ہنگامہ مچ جائے گا، لہٰذا اسے خاموش اور مخفی طور پر مارنا ہے۔
مطلب الزام تمہارے اوپر نہ آئے۔ اب معاہدہ بدل گیا ہے، اب میں دو تھیلی لوں گا تاکہ اس کی تلاش کا کام شروع کروں۔ کیا نام بتایا تھا اس کا تم نے؟
فیمون۔
اوکے سمجھ گیا، ایک تھیلی اس کو قتل کرنے کے وقت لوں گا اور بعد میں اس کی لاش دیتے وقت دو تھیلیاں لوں گا۔ اب جاؤ اور اپنے آقاؤں سے کہہ دو کہ ان کا دامن بچا رہے گا۔
اگر پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پھر بھی حاران نجرانی گلیوں کا چور ہی رہے گا۔
دیکھو کلاب، یہ چیز میں تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں کہ کب اس معاملے کو توڑنا ہے۔
آج کی رات بھی کیا رات ہے، میں نے ابھی اپنے ہونٹوں کو تر کیا ہے اور میں خوش ہوں کہ میں دوبارہ شروع کروں گا تاکہ صبح لطف اندوز ہوں اور مزے لیتا رہوں۔ میں تم سب کو مالا مال کر دوں گا تاکہ ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ نہ رنگے جائیں۔
سونے کی ہوا چل رہی ہے تو اچھے سے ڈالو اور چھڑکو۔
حاران، مجھے تو بتایا گیا تھا دمشق میں تمہارے ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹ دیے گئے تھے۔
ٹھیک سے پتہ کرنا تھا نا، وہ خبر میں نے خود ہی اڑائی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ تمہاری گردن کو جکڑتے ہیں یا نہیں۔
آؤ اسے لے لو، میری جان مجھے بخش دو۔ میرے گھر میں یہ سونا ہے، میرے کمرے میں یہ سونا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، بس میری زندگی مجھے بخش دو۔ اب تم مجھے قتل تو نہیں کرو گے نا؟
میں کتوں کو نہیں مارتا، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔
اچھا تو تم خبر جاننے آئے تھے؟
میں اس شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں۔
فیمون، کسی کو نہیں معلوم کہ فیمون نجران کے کس عیسائی کے گھر میں رکا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو پیسے دے کر نہیں خریدا جا سکتا اور تشدد کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میری جان فیمون کے لیے ہے، میں نے ان کی زبان سے تیز کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اس شہر کی کوئی چیز بھی میری نظروں سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ لیکن حاران، تم بھی تو تاجر ہی ہو، تمہیں تو سب باتوں کا پتہ ہے نا میری جان؟
तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमने नहीं देखा? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे उसका पता चाहिए। खबर तैयार रखना, इस बार तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी खबर का इनाम होगी।
अगर आप ज्यादा महफूज नहीं, आप बर्नबास के पास रहिए जब तक मैं आपके लिए कोई और जगह तलाश करता
हूं। कल एक बेगुनाह मेरी जान की हिफाजत की खातिर मारा गया, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता।
वो आपको मारना चाहते हैं क्योंकि लोग एक कामिल मजहब का मुतालबा कर रहे हैं।
आपकी जान की हिफाजत ईसाइयों की जिम्मेदारी है।
इसमें कोई शक नहीं कि खुदावंद तआला हम सब की हिफाजत करता है। मैं राजी नहीं हूँ कि मेरी वजह से ईसाइयों को खतरा पहुँचे।
हमें फेमून की जान की हिफाजत के लिए एक गार्ड रखना चाहिए जो एक बेहतरीन गार्ड हो, और उसे पैसा देकर रखना चाहिए।
हम सब इस दिन के मुंतजर हैं जब ये मुश्किलात खत्म होंगी और वो दिन आ जाएगा।
तीसरा मुकाबला, छठा मुकाबला, परिंदाबाजी। जीतने वाले को 50 सिक्के मिलेंगे। यमन के बादशाह ज़नूस और गवर्नर अंद्रियास के नाम से शुरू करते हैं।
शर्माव नहीं, ये सब हमारा ही है।
देखो तो, ये बस एक मुकाबले की बात है। इतना गरूर मत करोगे, तुम ही हमेशा जीतोगे। बल्कि जीतने वाला तो उसको कहते हैं जो हमेशा और हर मैदान में जीत कर दिखाए।
कुछ लेंगी भी नहीं।
जमीन के नीचे भी चले जाओगे तो पकड़ लूंगा।
हिम्मत है तो पकड़ लो।
इसे जिंदा लेकर आना, लेकिन ये तो मर गया है।
जिंदा है, सात जिंदगियां हैं इसकी।
अगर ये मर गया तो इसके कत्ल का इल्जाम मुझ पर आ जाएगा।
इस दुनिया में एक भी सितारा नहीं है कि जब तक ये चलता नहीं, इस वक्त तक वो खाक में रहता है।
मेरी चमड़ी इन बातों से कहीं मोटी है।
ये लो, कहा नहीं था कि जिंदा है?
खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। इसलिए नहीं कि तुम मुझे प्यारे हो, बल्कि सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमने जो काम तुमको सौंपा है उसे खत्म करो।
पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कौन सा तरीका है मेहमान को मधु करने का, मुझे वीराने में क्यों लेके आए?
खामोशी से साए की तरह फैमून को लाकर तुम निकल जाते हैं जैसे ही आप गिरते हैं, लेकिन तुम पूरे शहर में दौड़ लगाते फिर रहे हो, मुकाबले में शिरकत कर रहे हो और हीरोपन दिखाते हो। तुम्हारी आंखें उन मुकाबले के चंद सिक्कों पर ठहर गई हैं, समझ नहीं आती?
10 गुना पैसे पहले ही ले चुका है।
आखिर तुम्हें हुआ क्या है शख्स? फैमून को जल्दी से ढूंढ कर हमारे सामने लाओ।
याद रहे कि आप लोगों ने मुझसे लाश तलब की थी, लिहाजा आपको थोड़ा सब्र करना होगा।
जब तुम हमारा काम कर रहे थे तो तुमने मुकाबले में शिरकत क्यों की? क्यों हमारे काम को परे रख दिया?
मैं मुकाबले में शिरकत ऐसे बिलावजा नहीं कर रहा, बल्कि अपना काम कर रहा हूँ। मैं अगर मुकाबले का हीरो बन जाता हूँ तो मैं मुकाबलों के शोर में फीमून को कत्ल कर दूंगा। किसी को भी मुकाबले के हीरो पर शक नहीं होगा।
ये शैतान बातें तो बहुत करता है लेकिन काम बेहतर जानता है।
मेरा फर्ज है कि मैं इस नए नवेले से लोगों के मजहब की हिफाजत करूं। मुझे यकीन है कि मैं इसकी बातें समझ रहा हूं, जो कुछ भी ये कह रहा है या कहना चाहता है। ऐ कल्लाब, अब छोड़ो, इस दफा तो जाने दो, और मैं भी बुढ़ापे का ख्याल करते हुए भूल जाता हूँ। लेकिन एक बार और हम कुछ ऐसा करते हैं कि माबत की 300 साल पुरानी शराब का गिलास हाथ में लेने का मौका मिले।
जिस दिन हम फीमून से निजात हासिल करेंगे खुशी मनाएंगे।
जल्दी आएगा वो दिन जिसके लिए मैंने मुआवजा लिया हुआ है, ताकि इससे छुटकारा मिले। क्या खिला दिया है मुझे नामर्द?
ऐ कलाब, तुमने ये मोती किस खराब सदफ से हासिल किया है?
मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये नजरान के भिखारियों में से था। ये शहर के हर एक सुराग से वाकिफ है। ये शहर के सारे चोर और बदमाशों का डॉन है, और शहर के सारे बदउनवान लोग इसको जवाब दे हैं। इसे सिर्फ शहरत और पैसे से मतलब है, और सबसे अहम बात ये कि चुटकियों में इंसान को खत्म कर देता है।
था कि तुम्हें जमीन के नीचे से भी ढूंढ लूंगा, वो सिक्के मुझे दे दो। मुझे क्या करना चाहिए? वापस कर दो, है ना? वापस करो, वापस दू, वापस ना दू, वापस दू। सब जाएं बाढ़ में, फीमून, नजरानी और रबी सब जहन्नुम में जाएंगे। ये सारे सिक्के तुम्हारे दामन में आसमान से गिरे हैं, अब और क्या चाहिए? उसका बाप बीमार है, मुझसे क्या लेना देना? वापिस दे दूं? वापिस नहीं दूंगा, सिक्के मेरे पास हैं, खत्म। तुम भी कुछ कहो, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं सिक्के का बहाना बनाकर उसकी बेटी को देखना चाहता हूँ? मजाक सूझ रहा है तुमको? हमारी राय नहीं चाहिए।
निशान कैसा है?
हाँ, ये एक सफर की यादगार है, बाद में किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा।
मुकाबलों के बाद यहाँ रहोगे या फिर सफर पर चले जाओगे?
नजरान शहर वफादार नहीं है, यहाँ के लोगों से उम्मीद मत रखना। यहाँ रहने वाला हर शख्स दूसरे की पीठ पर वार करता है। मुकाबलों के बाद यहाँ पे रहना ना रहना मेरे लिए बराबर है।
मुझे शहर की हलचल से निकालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। साहिले समंदर की खामोशी मुझे पुरसुकून करती है। मैं बहुत परेशान कुन दिनों से गुजर रही हूँ।
क्या तुम्हारे बाप की बीमारी की वजह से?
शायद मेरे वालिद की बीमारी मेरे लिए बहुत छोटी मुश्किल है। क्या तुम अपने सफर को थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर सकते हो?
यानी मैं रुक जाऊं किस लिए?
हाँ, सिर्फ थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि मुकाबले के बाद मैं तुमसे कुछ काम चाहती हूँ, क्योंकि तुम इतने बहादुर हो।
रिफ्का ने मुझे तुम्हारी बहादुरी के बारे में बहुत कुछ बताया है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे चाहिए। तेज तरास आंखें, बेदार तलवार और तुम्हारी पक्की और सख्त जबान। तुम इस घर में जो कुछ भी देख रहे और सुन रहे हो वो सब एक राज है। मैं चाहता हूं कि तुम उस आदमी की हर खतरे से हिफाजत करो और उसकी देखभाल करो, क्योंकि उस शख्स की जान मेरे लिए तमाम दुनिया के सिक्कों से बढ़कर है।
क्या वो शख्स नजरानी है?
नहीं, जितना कम जानो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। और तुम्हें 5 सिक्के सोने के मिलेंगे। हर सुबह ये रकम तुम्हें नकद में मिल जाएगी। इस काम के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे भी बेहतर उजरत हो सकती है।
शर्मिंदा हूँ मैं, हाँ नहीं कह सकता। इस काम की उजरत ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी एक आधा और अधूरा काम है जिसे मुझे हर हाल में ख़त्म करना है।
रोज के 10 सिक्के।
मुझे यहाँ रुकना होता तो मैं ज़रूर आपका काम कर देता, लेकिन मुझे इस बेकार जगह से 1-2 दिन में बाहर निकलना है।
जो खुदा चाहता है वही होता है।
रुकोगे? क्या वो रुकेगा?
मैंने काफी इसरार किया लेकिन लगता है इसे कोई काम है, ये नहीं रुक सकता।
रुके साले, जल्दी आओ। बरनवास की हालत खराब है।
फीमोन, मैंने तुम्हें ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दिया और तुम मेरे दोस्त के घर बैठे हो।
मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। सीधे हो जाओ, अभी भी वक्त है। पागल हो गए हो तुम सब। फेमून ने तुम सबको भड़का दिया है।
जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा मत खोलना।
अजीब बात कि इस वक्त कौन दरवाजे पर हो सकता है?
शायद कोई इंसान मुसीबत में है।
रुको, जरा उठिए। चाहे कोई भी आवाज आए बाहर मत आना, समझे?
ठीक है, समझ गया।
अगर कोई फीमोन को मारने आता तो वो पिछली बार की तरह दीवार से आता, ना कि इस तरह से।
क्या तुम जानती होगे इंसान को मारने के कितने तरीके होते हैं? सोने की एक्टिंग करो।
आ रही हूँ। आ रही हूँ। कौन हो तुम? दरवाजे पर कौन है? क्या हुआ? मैंने ताजिर को चाकू मारा और वो मर गया।
मेरे आका
कि क्या मुसीबत में फंस गया? अब तो तुम सब मेरे ख्वाबों में भी आने लगे हो।
विमान आ रहे साई, अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं।
तुम लोगों की वजह से अब उन ईसाइयों से मुझे डर लगने लगा है। मैंने अपनी हर चीज तुम लोगों पर छोड़ दी थी और उसका नतीजा आज नजर आ रहा है।
अब तक अगर कोई फीमून के सामने खड़ा हुआ है तो वो और कोई नहीं, हम रबी ही थे। वरना आपका वो मंसूबा सबके सामने फांसी देने वाला, हमने देखा कोई फायदा नहीं हुआ उसका।
फांसी के दिन आपकी वो तकरीर थी जिसकी वजह से मसीहियों की इंतकाम की आग इतनी भड़क गई कि आज हमारे सामने ये ताजे की लाश पड़ी हुई है।
खुद अपने गिरेबान में जाके देखो, तुम लोग खुफारा से अपना दिमाग खो बैठे हो और हम सब उन ईसाइयों का खिलौना बन गए हैं।
जनाबे जनूस नजरान के रास्ते में है और पहुंचने वाले हैं। कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि जनूस जब आएगा तो किसी पर रहम नहीं करेगा और वो हम सबको टुकड़ों टुकड़ों में काट कर चौक पे लटका देगा।
लेकिन तुम तो बेगुनाह हो अंद्रियास।
जाकर ईसाइयों को भी बता दो ये हमारे दरमियान इख्तलाफ है।
क्या ये वही रबी आजम नहीं था जो हवा से बातें कर रहा था और कह रहा था कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ईसाइयों की और फैमून की कहानी खत्म कर दूंगा।
हो गया तुम लोगों का, हो गया।
ऐसे कैसे हम तारीख का सुनहरा बाप बनेंगे?
दास्तान, हम और आप अगर ईसाइयों के हाथों से बच पाए तब ना। ये मुआयदा हम लोगों का तारीखी मुआयदा।
शायद हम पे काबू पाना बहुत जल्द ना हो सके। आज तो आप बहुत जल्दी में लग रही हैं।
अपनी जबान संभाल कर बोलो वरना तुम्हारे हलक में गरम सरिया डलवा दूंगा।
अब जब के जो हमारा मंसूबा था उसके बरक्स सारा काम हो रहा है, लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताजर की कब्र को खुफिया रखना होगा और फिर जब तक फैमून का काम तमाम ना हो जाए हम इंतजार करेंगे।
कातिल बस एक कदम दूर है फीमून तक पहुँचने में। जनूस के आने से पहले फीमून का काम तमाम हो जाएगा।
हम अपने ज़ाती मफाद के लिए अजीम ताजर की लाश को अपने मंसूबे का हिस्सा बनाएंगे इस तरह से कि उसका कत्ल ईसाइयों की गर्दन पर डाल देंगे और ताजर की मौत ईसाइयों की बगावत की शुरुआत होगी।
आखिर ताजर की लाश हमारे कुछ काम आई, उसके लिए जाम पीते हैं। हमें नहीं पता कि कातिल कौन है लेकिन वो फेमोन से हमारी जान छुड़वाने वाला है।
क्या मैंने तुमको ना बताया था कि तुम हारान के औजार को हाथ नहीं लगाओगे? चलो भागो यहाँ से, जल्दी भागो, जाओ भी।
नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं,
मैंने कहा यहाँ से भागो। ईसाई लॉकेट,
सच्चाई दिखाई देगी। बहुत बकवास करते हैं। मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी के दौरान बहुत अहम और मशहूर हो गया हूँ, और मैंने एक मशहूर तरीन दवाई बनाई है जो बहुत गर्म है, इसकी गर्मी जहनों की गर्मी से कम नहीं, जो ऐसे जलाती है कि जलाकर राख कर देती है। मैं मुजरिमों को सबके सामने जला देता हूँ बहुत ही उमदा और नजायज तरीके से। तुम्हारी तरह मैं डरपोक नहीं हूँ, किसी को जहर से मार डालूं। अब तुम ये जहर किस्मत किस्मत को खिलाना चाहते हो?
इससे कोई लेना देना नहीं।
मैं बस जानना चाहता हूँ कि कौन है वो। हम एक दूसरे के हमराज हैं। मैं तुमसे कितना सोना मांगूं? हम दोनों एक ही थाली के चिट्टे हट्टे हैं। अब तुम जहर से किसी को मारते हो और मैं चला कर।
अपना चेहरा हक की रोशनी में रख के देखें, ये जलता जरूर है लेकिन इससे मुझे हौसला मिलता है। कोई भी किसी के भी दिल के हाल को नहीं जानता, ना मैं ना आप, सिर्फ खुदा ही हमारे दिल का हाल जानता है। लिहाजा किसी को इसका जाहिर देखकर फैसला ना करो।
बच्चों को मना किया था कि कोई इस कमरे में ना आए, लेकिन वो नहीं सुनते।
सच कहूं तो मैं डर ही गया था।
बच्चों को हर जगह पर नहीं आना चाहिए।
क्या तुम बच्चों पे हमेशा इतनी सख्ती करती हो?
फीमोन कहते हैं कि जो कुछ हम बचपन से सीखते हैं वो मौत तक हमारे साथ होता है। बेहतर है कि बच्चे बचपन से समझें कि क्या बेहतर है और क्या गलत है। अगर बच्चे का बचपन का सफेद वर्क गलती से स्याह हो जाए तो फिर उसका मिटाना बहुत मुश्किल है। या फिर खुदा हमारी मदद करे। हाँ, अब तुम ही मुझे बताओ कि किससे ये सब बातें मैं करूं, तुम खुद ही बेहतर जानते हो।
अरे नहीं, चाहे तुम कितनी भी बातें करो मैं थकता नहीं। तुम्हारी आवाज अच्छी लगती है, मेरे दिल को छू जाती है।
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मसीही हो? मैंने तो इत्तफाक से कमरे में लॉकेट देख लिया और सिर्फ उस बच्चे की वजह से तुम्हारे मसीह होने को जान पाई।
मुझे माफ करो रुफ़के, नजरान में बहुत सारे लोगों के सामने अपनी जबान महफूज रखनी पड़ती है। यकीन करो मैं तुम्हें बताना चाहता था। पिछले साल मेरा एक साथी था जिसने मुझे ईसाई मजहब से मुतारिफ कराया, तब से मुझे इस नए मजहब से प्यार हो गया।
क्या उसने तुमको फीमोन की तस्वीर दी?
हाँ।
फीमोन की हिफाजत के लिए हमें तुमसे बेहतर आदमी नहीं मिल सकता था।
मैं फीमोन के साथ रहना चाहता था, मैंने उसे हर जगह तलाश किया।
तो खुदा का शुक्र कि हमको वही आदमी मिल गया जो हम चाहते थे। अगर तुम्हें अपने कमरे की सफाई में मदद चाहिए तो मुझे बताओ।
अरे नहीं नहीं, मैं खुद कमरा देख लूंगा, तुम तो पहले ही इतनी जहमतें उठा रही हो। तुम बरनबास को दवा दे दो।
मैं ये फीमोन के लिए ले जा रही हूँ।
ये मुझे दे दो, मैं फीमोन को दे दूंगा। तुम अपने बाबा के लिए जाओ, जरूरी है।
मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो हारान।
तुमने ही नहीं जानती कि मैं यहाँ होने से कितना खुश हूँ। जब भी मैं आपको देखता हूँ आप किताब लिखते रहते हैं, आपको किस चीज़ का डर है जो जमा कर रहे हैं?
मैंने देखा कि उलमाए यहूद दीन की हकीकत और सच्चाई लोगों से छुपा रहे हैं, लेकिन मेरा काम सिर्फ सच बताना है। इसीलिए वो मुझसे डरते हैं, क्योंकि मैं लोगों को आखिरी निजात दहिंदा के बारे में आगाह करता हूँ। मैं उन लोगों के बारे में लिख रहा हूँ जो बनी नू इंसान की रहनुमाई के लिए आएंगे। ये एक मुकद्दस किताब है और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आखिरकार चांद बादल के पीछे से निकलेगा।
मैं किसी का इंतजार नहीं करता, मैं खुद ही चांद को बादल के पीछे से खींच लाता हूँ।
हर शख्स जितना कर सकता है वो इसकी जिम्मेदारी है। तुम बहुत अच्छी तलवार चलाकर जंग लड़ सकते हो और मैं कलम उठाकर लिख सकता हूँ।
बच्चे सख्ती से पकड़ना सीखो, समझे? सुना है आप एक बार महल गए थे और बच के आ गए।
एक अकीदतमंद आदमी की जान की कीमत पर मैं घर बैठकर बरनबास की बीमारी और परेशानी को देखता हूँ, लेकिन मैं उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं एक दवा को जानता हूँ जो एक पौधा है और वहाँ उन पहाड़ियों में मिलता है। तुलुए फजर के वक्त वो फूल देता है, सूरज तुलु होते ही इसकी पंखड़ी गिरती है।
ठीक है, मैं आपको खुद उस पहाड़ी पर ले जाऊंगा।
अगर साले मान जाए तो कल ही पहाड़ी पर चले जाएंगे।
मैं हिसाब करने में मशहूर हूँ बेटे। जैसे ही मैंने देखा कि तुम नजरान में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, मुझे एहसास हो गया कि तुम अपने काम में लगे हुए हो। ठीक है ना? फीमून कहाँ है?
ये थैली फीमून को तलाश करने की थी, ना कि उसको कत्ल करने की। कल उसका पैर फिसल जाएगा और पहाड़ के नीचे कहीं गिर जाएगा और खत्म हो जाएगा।
मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं कहां आऊं, और मैं सबसे पहले इसकी लाश देखना चाहता हूं।
वहीं मिलना जहां पहली बार मिले थे। तलुए आफ्ताब के एक घंटे बाद वहीं मिलना। तीन थैली और लेकर आना, वरना लाश नहीं मिलेगी।
यानी सूरज निकलने के बाद?
एक बड़े जश्न का पेश खैमा है।
कल रात से हम बगैर खौफ हरास के अपने तकियों पर आराम करेंगे।
आखिरकार हम सबको हमारे सब्र का फल मिल गया। फैमून की मौत इसी के काबिल थी।
नबी आजम कल आपकी खबर से इतना खुश हो गए कि वो इबादतगाह का कोना और अपनी इबादत छोड़कर यहाँ हमारे साथ तफरीह करने आ गए।
हम सब ने एक साथ मिलकर अहद किया था और कसम भी खाई थी कि अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया और अच्छी तरह से हो गया तो मैदान दूसरों के लिए खाली कर दूंगा।
मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि जनूस के आने से पहले नजरान में अमन और सुकून हो जाएगा।
ये खुशखबरी मैं खुद जनूस को दूंगा, लेकिन इससे पहले लोगों का हक है कि वो खुश रहें। कल आखिरी मुकाबले से पहले तमाम लोग नजरान के खजाने के मेहमान होंगे, ताकि वो खाएं, पिएं, डालें, छिड़कें, जो चाहे करें। म्यूजिक बजाने वाले जोर से बजाएं। मैं चाहता हूं कि हमारी खुशी की आवाज आसमान को बहरा कर दे।
बूढ़े आदमी को जानता था। वो कहता था कि चांद गरीबों के सरमाए को दुगना कर देता है। जब वो चांद को देखते हैं तो उनकी तन्हाई दुगनी हो जाती है।
क्या तुम्हें तन्हाई का एहसास हो रहा है?
अभी तो तुम यहाँ हो ना, लेकिन मेरी तन्हाई मेरे खून में है।
रात मैंने ख्वाब देखा कि आसमान पे एक कश्ती में हम बैठे हुए हैं, सूरज की तरफ जा रहे हैं, और उस कश्ती के नाखुदा तुम हो। फीमून, बरनबास और सौले सभी कश्ती में बहुत खुश बैठे हुए हैं।
मुकाबलों के बाद बहुत सी बातें तुम मेरे बारे में सुनोगी।
हाँ, हमेशा ही जीतने वाले के लिए कहानियाँ बनाई जाती हैं और उसकी शान में शेर कहे जाते हैं।
जो कुछ भी तुम मेरे बारे में सुनो उसको दिल पर मत लेना, सिवाय इसके कि मैं इस शहर में पला हूँ। मुझे इस शहर से नफरत है और मैं बेजार हूँ इससे।
आज की रात तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो?
क्या तुमने सुना नहीं कि जब चांद पूरा होता है तो पागलों को और पागल कर देता है? उनमें से एक मैं हूँ।
और नया दिन शुरू हो चुका है। ऐसा कोई लम्हा नहीं जब मैं मौत के बारे में नहीं सोचता और मैं मौत के बाद की जिंदगी के लिए तैयार नहीं होता हूँ। रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोचने का हर लम्हा मुझे पूरी उम्मीद कर देता है।
फेमून, आपकी मुश्किल ये है कि आप बहुत सोचते हो। जिंदगी खुद ही चलती है, मेरी मौत तो कहीं ना कहीं आनी ही है। अपना ख्याल करो और उस रास्ते से जाओ जो मौत तक देर से पहुंचता है। बास को तो इसका इल्म तक नहीं होता है और मौत को गले लगा लेते हैं।
क्यों अपना अधूरा काम पूरा नहीं करते हारान? मैं तैयार हूं। मैं उस रात साले के घर पर वो आंखें नहीं भूलूंगा। तुम जब से मेरे मुहाफिज बने हो तब से दिन रात मैंने मौत का इंतजार किया है।
तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं कि मैं कौन हूं?
तुम्हारे ख्याल में मैं कौन हूं? वो शख्स के जिसमें बहुत ज्यादा सब्र तहम्मुल है। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मेरी भी एक हद है। ईसाइयों के दुखों से मेरा दिल भारी हो जाता है। मेरी मौत शायद ईसाइयों की तकलीफ दूर करे। मुझे मारने से तुम्हारा वो अधूरा काम पूरा हो जाएगा। मुझे तुमसे कोई रंजिश नहीं है हारान। मैं मौत से नहीं डरता। मैंने खुदा के साथ एक अहद किया है, मैंने खुदा के साथ वादा किया है। लिहाजा तुम्हें जो काम सौंपा गया है इसे बेहतर तरीके से अंजाम दो।
पूरा हो गया।
आगे बढ़ो।
आओ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम आओगी।
फीमोन ने हमें सब कुछ बता दिया है।
बहुत अच्छे, तो अब तो तुम जान चुकी हो मैं कौन हूँ।
मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ।
दीवार के पीछे सिपाही है।
जाओ, भाओ,
भाग जाओ, जाओ हरान।
रुफके को पुरअमन जगह पे ले जाओ।
मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी।
मैं वापस आ जाऊंगा।
जाओ हरान।
मैं वापस आ जाऊंगा। तुम दुनिया में कहीं भी रही, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जल्दी जाओ, जाओ।
मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा हरान, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
हरान, तुम थक गए हो। देखो, तुम जानते हो कि किसी के साथ गद्दारी करने पर क्या मुसीबत आती है। तुमने अपने साथियों के साथ सिर्फ धोखा किया, सिर्फ इस चीज के लिए तुमने अपने आप को चंद थैलियों में फरोख कर दिया। काफिले में लड़की को लुभाना तुम्हारे लिए चोर से दोस्ती करने से ज्यादा अहम था।
तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मैं तुम चोरों से अलग हो चुका हूँ और इस बात को बहुत अरसा गुजर चुका है। मैं एक जगह रहने वाला इंसान नहीं हूँ।
तुमने एक लड़की की जान बचाने के लिए मेरे दो आदमियों को कत्ल कर दिया मनहूस। अब तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि हमेशा याद रखोगे।
ये जगह अब रहने के लायक नहीं। मैं नजरान से आ रहा हूँ। शहर में अफरा तफरी मची हुई है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। शहर के तमाम सड़कें ज़ेनोस के फौजियों से भरी हुई है। अंद्रियास फरार हो गया है। ज़ेनोस के सिपाही ईसाइयों की जानों के दुश्मन हो गए हैं और उन्हें कत्ल कर रहे हैं। गुलाम दूध पीकर जा रहे हैं।
Thank you.
मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नजरान कौन की होली खेली जा रही थी। किसी पे रहम नहीं कर रहा।
यहाँ से एक एकड़ के बाहर निकलो, मैं वादी के निचले हिस्से में तुम तक पहुँच जाऊंगा।
हाँ।
मैं एक अधूरा काम करके आता हूँ।
जानवर भाग गया।
अपना हाथ कैसा खोल लिया उसने।
उठो हारान, उठ जाओ, अब कुछ नहीं बचा है। सब्र करो हारान, उठो सब्र करो, मजबूत बनो, उठो, आ जाओ, उठो हारान।
कांटेदार पत्थर गवाही देंगे कि तुम अपने गुनाहों की वजह से यहां मौजूद हो। मिलाओ मेरा पी जो तुम्हारे हाथों से मारा गया नचरान में वही मेरी आंख था। ये ना समझो कि मैं नहीं जानता कि तुम ईसाई एक दूसरे के कानों में किस तरह सरगोशी करते हो। उसने तुम्हारे उस जुर्म पर अपनी आंखें इसीलिए बंद की थी कि तुम्हें होश आ जाए और धोखा ना खाओ। अब तुम लोगों के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि अपनी गुमराही से वापस आ जाओ और अपने नए ईसाइयों से मुंह मोड़ लो और यहूदियों से तौबा कर लो। दूसरा रास्ता अपने लोगों से सच्चे हो जाओ और अपने बाप और दादा के मजहब पर वापस आ जाओ और जान लो कि तुम सबसे रूस के गजब से महफूज नहीं रहोगे। हुदूद की आग तुम पर जलाई जाएगी।
शरीयत एक ऐसी छलकती नदी है जिसको कोई भी बांध कर रोक नहीं सकता। ए लोगो, आप में से किसी को भी जबरदस्ती ईसाई होने के लिए नहीं कहा गया है और ना ही किसी ने तुम सबको इंतजार करने पर मजबूर किया है। खुदा हम में से हर एक के दिलों को जानता है। ये अखदूद की आग हमें तबाह नहीं कर सकती। जो जो भी इस आग में जलेगा उसकी राख में से एक फिनिक्स निकलेगा। हमारी मौत बेकार नहीं होगी। शायद ये आखिरी रसूल की आमद का पेश खैमा हो सकती है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं।
बर्नबास, रफ़के कहाँ हैं? बर्नबास, फीमून और दूसरे लोग कहाँ हैं? जल्दी बताओ।
सबको हुदूद की वादी में ले गए हैं।
कहाँ ले गए? मैं जाता हूँ, उनको ढूंढता हूँ।
सब्र करो हारान, सब्र करो। तुम्हारे जज्बात रफ्के के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा खून और तुम्हारा खून अता रफ्के के खून की कीमत बहुत कम है, जो इस किताब की हिफाजत के लिए मसीही नजरान की इस फहरिस्त को उस मुकद्दस किताब हफशा ले जाओ। रफ्के के वास्ते, खुदा के वास्ते।
जला देता हूं, हुक्म की तामील की जाए।
Thank you. خدا کے نام پر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اخدود کے لوگ ہلاک کر دیے گئے، اسی آگ سے بھری ہوئی خندق میں جلا دیے گئے، کیونکہ وہ اسی آگ پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مومنین کے ساتھ کرنے والے سلوک پر خود گواہ ہیں۔ سورہ مبارکہ بروج۔